आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांगना द्विवेदी और हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर चुका था लास्ट क्लास में एंड आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पेज नंबर 31 में शीत ऋतु से स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने ये देखा था चित्र 4.4 में कि मॉनसून का जब आगमन होता है तो वो कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले 1 जून को वो चेन्नई तक पहुंचता है, 5 जून तक बैंगलोर से देखिए इन क्षेत्रों तक, फिर 10 जून तक मुंबई से भुवनेश्वर पटना, 5 जून को कोलकाता बांग्लादेश को, 1 जून को पहुंच जाता है क्योंकि दोनों साइड से हवाएं चलती है, बंगाल की खाड़ी से भी और अरेबियन सी से भी। उसके बाद 15 जून को मिड ऑफ जो इंडिया है वहाँ पहुँचता है, 1 जुलाई को नॉर्दर्न साइड पड़ता है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड, और 15 जुलाई तक वो पाकिस्तान वाले जो रीजन है पूरा उसमें पहुंच जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 33 में सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, सो लेट्स स्टार्ट। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने प्रवाहित होती है, ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है क्योंकि वहाँ ये पवने समुद्र की स्थल की ओर बहती हैं। इस सीजन में क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो पूरे कंट्री में उस टाइम पर ब्लो हो रही होती हैं, उस टाइम पर फ्लो करती हैं और ये लैंड टू सी होती है, मतलब लैंड से सी की तरफ ये हवा जाती है। इसलिए यहाँ का जो मौसम इस टाइम का रहता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, सूखा मौसम रहता है। उसके बाद जब ये तमिलनाडु के कोस्ट पर जाती है तो ये थोड़ा बहुत वहाँ पर रेनफॉल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो हवाएं हैं वो सी टू लैंड जाती हैं, तो सी में जो पानी इवेपोरेटेड होता है वो तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज पर बरस जाता है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसमें हल्की पवने इस क्षेत्र से बहार की ओर प्रवाहित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवने शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। हमारी कंट्री का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर एक बहुत हल्का सा हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है जो कि बहुत हल्की हवाओं का होता है जो इस एरिया से बाहर की तरफ ब्लो होती है। उसके बाद ये क्या होता है, गंगा वैली जो होती है वहाँ पर जो विंड्स ब्लो होती हैं वो वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के साइड पे वो ब्लो होती है। तो इस टाइम पर जो वेदर होता है वो क्लियर स्काई होता है, जो मतलब बादल नहीं होते हैं, बारिश वगैरह नहीं होती है और टेम्परेचर वगैरह भी बहुत लो रहता है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी लो रहती है और काफ़ी वेरिएबल विंड्स रहती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसमें हल्की पवने इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान आर्द्रता कम एवं पवने शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जब ठंड का मौसम होता है तो कोल्ड वेदर का जो रीजन होता है वो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से ठंड का ये मौसम इतना ठंडा रहता है। ये जो लो प्रेशर सिस्टम होता है पूरा हमारा, कम उच्च दाब का जो सिस्टम होता है वो मेडिटेरेनियन सी से वेस्टर्न एशिया से लेकर इंडिया की तरफ ये मूव करता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, कुछ जगहों पर ठंड के टाइम पर भी बारिश हो जाती है। अब क्या होता है, वैसे ये बारिश तो बहुत कम होती है लेकिन उस टाइम की जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो इस टाइम की जो बारिश है ना उसको लोकली महावट बोला जाता है।
महावट उसका नाम दिया गया है, जो कि रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हम इरिगेशन फैसिलिटीज तो बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी फील्ड्स इरिगेटेड हो रही हैं, बट वो जो बारिश का पानी होता है वो बूंद बूंद हर एक जगह अच्छे इवनली बरसता है ना, तो वो फसल ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है, समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। मतलब जितने भी हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज होते हैं वहां पर जो ठंड का टाइम है वो काफी क्लियर नहीं होता है, मतलब यहाँ पर जो समुद्री पवने होती हैं, सी ब्रीज जो होती है, उसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम बदलता है, ना के बराबर बदलता है। तो ये था, हमने ठंड के बारे में जान लिया कि ठंड के टाइम पर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे जो हवाएं हैं साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ का वेदर इतना कोल्ड रहता है, और जिसकी वजह से हमारे जो हिमालयन रीजन्स है वहाँ पर स्नोफॉल होता है और बाकी जो एरियाज है वहाँ पर थोड़ी बारिश होती है। अब आ जाइए ग्रीष्म ऋतु पर। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जाता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 82 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देखिए गर्मी के टाइम पर क्या होता है कि हमारा जो सन है वो नॉर्थवर्ड मतलब नॉर्थ के साइड शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से जब उसका मूवमेंट नॉर्थ के साइड होता है तो हमारी जो ग्लोबल हीट बेल्ट होती हैं वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। इसलिए हमारे कंट्री में इंडिया में मार्च से लेकर मई तक हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। और ये जो शिफ्टिंग ऑफ ग्लोबल हीट बेल्ट होता है ना, कि ये अलग अलग टाइम पर होता रहता है, मतलब ये रिकॉर्ड्स हम करते रहते हैं कि मार्च से लेकर मई तक कौन से डिफरेंट लैटिट्यूड में कितना डिग्री इसका टेम्परेचर रहा है। मार्च में सबसे ज्यादा हाइएस्ट टेम्परेचर होता है गर्मी के टाइम पर 38 डिग्री सेल्सियस, जो कि डेक्कन प्लेट्यू में रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल का टेम्परेचर होता है गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस, और मई का टेम्परेचर अधिकतर जो होता है वो होता है 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज होते हैं हमारे इंडिया के, पेनिनसुलर एरियाज जो होते हैं प्लेट्यूज, वहां पर जो टेम्परेचर होता है, जो वहां के मॉडरेटिंग ओशंस होते हैं, जो सीज होते हैं, उसकी वजह से वहां का जो टेम्परेचर है काफी कम रहता है, इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर आरंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवने होती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। समर मंथ में क्या होता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जो एयर प्रेशर है वो काफी कम हो जाता है हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट है कंट्री का वहां पर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है मतलब हमारा जो सूर्य की गर्मी जो सीधी किरणें हमारे भारत पर पड़ती है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर प्रेशर क्यों कम होता है, क्योंकि जो गर्म हवाएं होती हैं उसमें काफी कम प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू ठंडी हवाएं। फिर ये एक काफी लंबा लो प्रेशर एरिया डेवलप कर देता है, ये जो हमारा समर सीजन होता है। और ये एरिया कहाँ से होता है, ये थार डेजर्ट से एक्सटेंड करता है हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ, तो इतना लंबा ये लो प्रेशर एरिया बना देता है। फिर एक जो हमारा स्ट्राइकिंग फीचर है इस वेदर का, इस हॉट वेदर सीजन का, वो है लू। लू आप सभी को पता है क्या होती है, गर्म हवा होती है जो गर्मी के दिनों में चलती है दोपहर में, और कभी कभी शाम को 6 बजे तक भी इतनी गर्म हवा चलती है, और सीधे सीधे अगर हम उस हवा में निकले और कुछ काम के लिए निकले तो हमें कहते हैं ना लू लग जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो ये बहुत ही डेंजरस होती है। इस टाइम पर कई बार धूल भरी आंधियां भी आती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा आरामदायक होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब धूल भरी आंधियां आती हैं तो वो अपने साथ ठंडी हवा लेकर आती है, थोड़ी बहुत बारिश, और कई कई जगहों पर इस टाइम पर अच्छी खूब तेज बारिश हो जाती है जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, और हम इसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बोलते हैं क्योंकि इतनी गर्मी से हमें राहत मिल जाती है। इसको बंगाल साइड में काल बैसाखी बोला जाता है क्योंकि ये बैसाख का महीना होता है, बैसाख के महीने में ये जो बारिश होती है इसको काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है, इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। मतलब जब हमारी गर्मी की जो सीजन है वो जब खत्म होने वाला होता है तो कर्नाटक और केरल में प्री मानसून होता है जिसकी वजह से आम जो है जल्दी पक जाते हैं, तो इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है जो कि आम को पकाता है। अब आ जाइए वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है, यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवने गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप से बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवने तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। मतलब जब जून का स्टार्टिंग होता है तो हमारे जो जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पर काफी ज्यादा लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, वहां की जो एयर होती बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है, तो जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है वहां से जो ट्रेड विंड्स है ना उसको ये जो हमारा लो प्रेशर एरिया है वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वहां से जो वो विंड्स आती हैं उस टाइम पर वो बहुत बड़े बड़े ओशंस और सीज से होते हुए आती हैं, तो इसलिए इवेपोरेशन के थ्रू वो काफी सारा पानी अपने आप में इकट्ठा कर लेती है, जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जब वो आती हैं तो वो भारी और ठंडी हवा हो जाती है, और हमारे यहाँ लो प्रेशर रहता है, काफी गर्म हवा रहता है, तो वो उसको इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि जितनी भी हाई प्रेशर विंड्स होती हैं वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाती है बैलेंस करने के लिए, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ मानसून आता है। ये पवने तीव्र होती है, मतलब ये काफी तेज होती है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और फिर हमारा जो सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसून पवने देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। मतलब जो हमारा उत्तर पूर्वी भाग है उसको छोड़कर बाकी पूरे हमारे देश में ये 1 महीने में पूरे ये मानसून विंड्स पहुंच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग भी में भी वर्षा होती है, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मौसिनराम विश्व के सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व के से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। जो हमारी मॉनसून विंड्स जब इनफ्लो होती है आती है हमारे कंट्री में, तो सबसे ज़्यादा ये साउथ वेस्ट रीजन में, मतलब वेस्टर्न घाट्स में ये सबसे ज़्यादा बारिश करती है। हमने जाना था पहले भी कि जब बारिश का सीज़न आता है तो वहाँ जो विंड्स होती हैं इसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। फिर जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है और जो पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश है यहाँ पर भी काफ़ी बारिश हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो होती है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और वो वहाँ पर है मौसिनराम जो कि सदर्न रेंजेस ऑफ खासी हिल्स में है, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बारिश वहीं पर होती है। फिर जैसे जैसे गंगा वैली की तरफ रेनफॉल जाता रहता है, रेनफॉल विंड्स जाती हैं, वैसे वैसे वो डिक्रीज होता जाता है ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। फिर राजस्थान और जो पार्ट्स ऑफ गुजरात है वहां पर बहुत ही कम रेनफॉल हो पाता है, बिल्कुल ना के बराबर हो पाता है, इतना कम रेनफॉल होता है। मॉनसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मॉनसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मॉनसून में आने वाले ये विराम मॉनसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानांतरित वितरण सुनिश्चित होता है। जब मॉनसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा के मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यहाँ पर ये हमें मानसून से रिलेटेड जो दूसरा फेनोमेनन है वो बताना चाह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो मानसून होता है, रेनफॉल जो होता है, उसमें काफी ज्यादा ब्रेक होते हैं। मतलब कभी कुछ दिनों तक एकदम होता ही रहेगी बारिश और कुछ दिनों तक एकदम ड्राई रहेगा, तो ये इंटरवल्स होते हैं जो बीच बीच में मॉनसून रुक जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हवाएं का जो मूवमेंट होता है वो काफी ज्यादा चेंज होता रहता है, इसलिए ये चीज होती है। इसका रीजन होता है कि जब हमारी जो रेनफॉल विंड्स हैं, जो मॉनसून विंड्स हैं, वो साउथवर्ड या नॉर्थवर्ड फ्लो कर रही है, किस तरफ फ्लो कर रही है उस पर ये डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके ऊपर से गुजर रहे हैं बादल, तो वहां पर बहुत अच्छी बारिश होगी। और अगर दूसरी तरफ हम ये मान लें कि ये जो इनका एक्सेस है जो मॉनसून विंड्स का, ये हिमालयास के साइड अगर शिफ्ट हो गया, तो हमारे जो प्लेन्स हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सूखे रह जाएंगे, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। फिर माउंटेन एरियाज में ज़्यादा बारिश होगी, जो हिमालयन रिवर्स है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। और ये जो हैवी रेन है ना, जो ऐसी रीजन्स पे होती है, हिमालयन रीजन्स पे होती है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लड वगैरह कॉज कर देती हैं, जो कि लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, चाहे वो हिमालयन रीजन्स पे हो चाहे वो प्लेन्स पर हो। जो लो प्रेशर गर्म हवाएं होती है ना, वो भी हमारे मॉनसून को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। ये जो मानसून विंड्स जो बे ऑफ बंगाल से लो प्रेशर बनाते हुए मेन लैंड के ऊपर से जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज लेकर आती है, इसलिए क्योंकि इस टाइम पर एक जगह अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अगर फ्लड्स आ गए हैं, बाढ़ आ गई, तो दूसरी जगह एकदम सूखा रह जाता है। तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और इसका जो अराइवल या वापसी का जो टाइम है ये निश्चित नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे जो किसान भाई हैं उनकी कृषि कार्यों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आ जाइए मॉनसून की वापसी पर, जिसे पर्वतीय परिवर्तनीय मौसम कहते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मॉनसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवने उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मॉनसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः कुआर की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तो यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि जब हमारा जो रेनी सीजन है, हमारे पूरे कंट्री में बारिश हो जाती है, उसके बाद वो जो विंड्स हैं वो वापस भी तो लौटेंगी। तो जब वो वापस लौटती हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में वो वापस लौटती हैं। और इस टाइम पर रीट्रीटिंग मानसून होता है, यानी कि वापस से जो वर्षा ऋतु के जितने भी मानसून विंड्स होती हैं हमारी, वो वापस अपनी जगह जा रही होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी लो प्रेशर एरिया होते हैं ना, वो हाई प्रेशर में बनते चले जाते हैं, और इसकी वजह से जो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया की जो विंड्स होती हैं वहाँ से हटती चली जाती हैं। उसका उसकी जगह कौन ले लेता है, हाई प्रेशर एरिया की विंड्स जो होती हैं वो ले लेती हैं। तो इस टाइम पर मौसम में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आता है। इस टाइम से हम वर्षा ऋतु से शीत ऋतु की ओर बढ़ते हैं, मतलब ठंड का सीजन आने लग जाता है। तो दिन के टाइम क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और रात के टाइम ठंडक रहती है और हमें काफ़ी अच्छा लगता है रात का माहौल यहाँ का। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा उमस रहती है, इसलिए इसको कुआर की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। नाउ कम टू द स्पीच बॉक्स, क्या आप जानते हैं मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं तथा स्टेलेगमाइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? मतलब मौसिनराम जो है वो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है, और ये दो गुफाएं जो हैं उसके लिए ये जगह बहुत ज्यादा फेमस है। नाउ कम टू दिस पैराग्राफ, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होती है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तटों को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। जो लो प्रेशर कंडीशंस होती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, वो बे ऑफ बंगाल में ट्रांसफर हो जाती है उस तरफ, मतलब नवंबर के शुरुआती दौर में। और ये जो शिफ्ट है वहां पर साइक्लोनिक डिप्रेशन लेकर आता है, जो कि अंडमान जो सागर है उसके ऊपर ये ओरिजिनेट होता है। इसकी वजह से यहाँ जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कई बार ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। ये जो हमारा थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का, वहाँ पर ये साइक्लोन्स आते हैं जो कि बहुत बड़ा डैमेज करते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी को, और कई बार ये कोस्ट ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश की तरफ भी बढ़ जाते हैं, कोरोमंडल कोस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अब आ जाइए वर्षा का वितरण पर। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मतलब जितने भी हमारे पश्चिमी, मतलब वेस्टर्न घाट के जितने भी एरियाज हैं और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। और जो वेस्टर्न राजस्थान है हमारा और जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात के जो भाग है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्रियों के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है, मतलब जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर भी जो बारिश है काफ़ी कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है, हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो पार्ट्स हैं जहाँ पर जो बारिश है वो कम होती है तो वो क्यों होती है, बाकी जगह पर और जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ पर लेह में भी बारिश बहुत कम होती है, बारिश तो वहाँ पर स्नोफॉल के रूप में होती है, जितने भी स्नोफॉल होते हैं वो हिमालयन एरियाज में क्यों होते हैं, तो इसका रीजन तो ये है क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा ठंडी होती है जिसकी वजह से वो जो बूंदे हैं वो नीचे आते आते जम जाती है। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। मॉनसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है, अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। मतलब इसका जो मॉनसून का जो टाइप है वो चेंज होता रहता है, हमेशा नेचर चेंज होता रहता है। जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है कई बार ऐसा होता है कि वहां पर बिल्कुल बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा ही बारिश हो जाती है, जैसे पिछली बार आपने सुना होगा राजस्थान के एरिया में बाढ़ आ गई थी, तो वहां तो बारिश वैसे ही बहुत कम होती है। उसके बाद जहां पर मीडियम होती है वहां पर भी बाढ़ आ गई, और जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर बहुत कम बारिश हो रही है, तो ये नेचर हमेशा इसका चेंज होता रहता है। अब आ जाइए मॉनसून एकता का परिचायक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी। मतलब हमने ये अभी तक वैसे ही पढ़ चुके हैं हम पहले से ही कि जो हमारा हिमालयन रीजन है उसकी वजह से इतनी जो ठंडी हवा आती है उसकी वजह से हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी वो रक्षा करता है, हमें एक्सट्रीम जो कोल्ड विंड्स है उससे बचाता है। लेकिन इसके बाद भी उन कोल्ड विंड्स के बावजूद हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पर जो टेम्परेचर है काफ़ी ऊंचा बना रहता है। फिर जितने भी हमारे प्लेट्यूज हैं और जितने भी हमारे समुद्र के प्रभाव हैं उसके कारण वहाँ पर जो तट वाला एरिया है वहाँ पर गर्मी सर्दी दोनों काफ़ी कम पड़ते हैं। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मॉनसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। ऑल्दो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, टेम्परेचर तो हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही रहता है बस हिमालयन रीजन्स को छोड़कर, तो जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा जितने प्लेट्यू वाले रीजन है वहाँ पर भी आपको इक्वल बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि होता क्या है कि जो मॉनसून विंड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती रहती है, उसका फ्लो चेंज होता रहता है, तो कई बार इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मॉनसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मॉनसून लय के चारों ओर घूमते रहते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो बारिश होती है, क्योंकि हमारा पूरा जो भारतीय भूदृश्य है, मतलब जिस तरीके से हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं, अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखते हैं, तो हमारी हर एक चीज इसी ऋतु से जुड़ी हुई होती है, चाहे हमारे वो नए त्योहार हो, चाहे हमारा कृषि चक्र हो, मानव जीवन हो, ये सारी चीजें इसी से जुड़ी रहती हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मॉनसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मॉनसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। मतलब ये जो मॉनसून का जो टाइम होता है इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी भी कुछ होती है, कई कई जगह पर बाढ़ आ जाती है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कृषि जो जितनी भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी जल्दी होने लग जाती है, और इस तरीके से ये हमें एक सूत्र में एक साथ बांधता है, मतलब यूनाइटेड रखता है मॉनसून हमारा जो है। नदी घाटियां जो इन जलों को संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया गया है, तो उसमें भी बारिश का पानी काफी अच्छे से भर जाता है ताकि हम पूरी कंट्री को उसमें पानी मिल सके। अब आ जाइए अभ्यास प्रश्न पर। इसमें सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संस्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम या गुवाहाटी? तो इसका आंसर है मौसिनराम। कम टू सेकेंड क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल, वैशाखी, व्यापारिक पवने, लू, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है व्यापारिक पवने। कम टू थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवातीय अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका आंसर है मानसून की वापसी। फोर्थ क्वेश्चन इज, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। तो इसका आंसर है जुलाई के प्रारंभ में। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं एवं रातें, ठंडा दिन एवं गर्म रातें। तो इसका आंसर है गर्म दिन एवं ठंडी रातें। कम टू सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें पहला है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो इसका आंसर है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चवाच लक्षण। ये सब मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आपको ये राइट आउट करना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? इसका आंसर है, भारत की जलवायु मानसून द्वारा अत्यधिक प्रभावित है, इसलिए इसकी जलवायु मानसून प्रकार की है। कम टू थर्ड क्वेश्चन, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? सो आंसर फॉर दिस इज, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, जिसमें भारत का मरुस्थल भी शामिल है तथा जहां सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है। थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि उसी रात में यह 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि रेत ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करती है और छोड़ती है। इस तथ्य के कारण इस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? इसका आंसर है, मालाबार क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है, दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, जेट धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार की जलवायु को प्रभावित करती हैं? इसका आंसर है, क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक सिकरी पट्टी, सकरी पट्टी में स्थित हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच विचलन करती है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन, मानसून को परिभाषित करें, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन मानसून है। मानसून के आगमन के समय के आसपास सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है जो कई दिनों तक होती रहती है। आर्द्र या युक्त पवनों के जोरदार गर्जन व बिजली चमकने के साथ अचानक आगमन को मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। वर्षा में विराम का अर्थ है कि मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्द की गति संबंधित होते हैं। कम टू सेवेंथ क्वेश्चन, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो इसका आंसर है, विभिन्न अक्षांशों में स्थित होने एवं उच्चवाच लक्षणों के कारण भारत की मौसम संबंधी परिस्थितियों में बहुत अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु ये भिन्नताएं मानसून के कारण कम हो जाती हैं क्योंकि मानसून पूरे भारत में बहती है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इन मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। मानसून के आगमन का पूरे देश में भरपूर स्वागत होता है। भारत में मानसून के आगमन का स्वागत करने के लिए विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। मानसून झुलसाती गर्मी से राहत प्रदान करती है। मानसून वर्षा कृषि क्रियाकलापों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। वायु प्रभाव में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन एवं इससे जुड़ी मौसम संबंधी परिस्थितियां ऋतुओं का एक लयबद्ध चक्र उपलब्ध कराती है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। कम टू थर्ड क्वेश्चन, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घट जाती है? तो इसका आंसर है, हवाओं में निरंतर कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से उठने वाली आर्द्र पवने जैसे जैसे और आगे बढ़ती हुई देश के आंतरिक भागों में जाती हैं, वे अपने साथ लाई गई अधिकतर आर्द्रता खोने लगती हैं। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज कारण बताइए। तो इसमें पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? तो इसका आंसर है, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन कोरियालिस बल के कारण होता है। भारत उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में आता है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। नाउ कम टू सेकेंड वन, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। तो इसका आंसर है, इसका रीजन क्या है ये हम जानते हैं, विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में प्राय द्वीपीय भारत में प्रवेश करती हैं। ये पवने गर्म महासागरों के ऊपर से बहते हुए आर्द्रता ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर विस्तृत वर्षण लाती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। कम टू थर्ड वन, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका कारण क्या है, सर्द ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। यद्यपि इन पवनों के कारण तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है क्योंकि वहां ये पवने समुद्र से स्थल की ओर बहती है। कम टू फोर्थ क्वेश्चन, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। इसका रीजन है, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि अंडमान सागर पर पैदा होने वाला चक्रवातीय दबाव मानसून एवं अक्टूबर नवंबर के दौरान उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराओं द्वारा देश के आंतरिक भागों की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसका कारण है, राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश सूखा संभावित होते हैं क्योंकि इनमें मानसून के दौरान बहुत कम वर्षा होती है। पवने पर्वतों पर आर्द्रता लिए हुए आती हैं किंतु तापमान में कमी अधिकतर आर्द्रता घटों की पवनमुखी ढालों पर वर्षण के रूप में खो देती है और जब तक ये पवनमुखी ढाल पर पहुंचती हैं तब तक वे शुष्क हो चुकी होती हैं। तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर है, सबसे पहला, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के निर्णायक प्रभाव तथा दक्षिण में महासागर होने के बावजूद भी तापमान आर्द्रता एवं वर्षण में ऋतुएं मौजूद हैं। तो इसका सबसे पहला जो रीजन है वो है, उदाहरण, गर्मियों में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि उसी समय देश के उत्तर में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। सर्दियों की किसी रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, अंडमान व निकोबार एवं केरल में दिन व रात के तापमान में बहुत कम भिन्नता होती है। थर्ड पॉइंट, एक अन्य विभिन्नता वर्षण में है जबकि हिमालय के ऊपरी भागों में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है और देश के शेष भागों में वर्षा होती है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक वर्षण 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। फोर्थ पॉइंट इसमें है, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। तो क्या क्या होता है मानसून के टाइम पर? किसी भी क्षेत्र को वायु दाब एवं उसकी पवनों उस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति एवं ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षण के पैटर्न को भी प्रभावित करती है। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है जिसमें सबसे पहला है वायु दाब एवं धरातलीय पवने, दूसरा है जेट धाराएं और तीसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। नाउ कम टू सेवेंथ क्वेश्चन, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। इस मौसम में आसमान प्रायः साफ रहता है, तापमान कम रहता है और मंद हवाएं चलती हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। उत्तर में तुषारा पात सामान्य है तथा हिमालय की ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। सो दैट्स इट विद सेवेंथ क्वेश्चन। कम टू एट क्वेश्चन, भारत में होने वाली मानसून वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मानसून की अवधि जून के प्रारंभ से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिन के बीच होती है। सेकंड, इसके आगमन के आसपास सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है या कई दिनों तक लगातार होती रहती है। थर्ड, मानसून में आई एवं शुष्क अवधियां होती हैं जिन्हें वर्षा में विराम कहा जाता है। फोर्थ, वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष अत्यधिक भिन्नता होती है। एंड फिफ्थ, जब यह पवनमुखी ढलानों एवं मरुस्थलों को छोड़कर भारत में शेष क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराती है। अब आ जाइए मैप वर्क पर, मानचित्र कौशल पर। इसमें आपको क्या क्या चीजें लोकेट करनी है। भारत की रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। पहला, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, वो आपको बताने जो कि मेघालय साइड है। सेकेंड, 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र जो कि राजस्थान साइड है। थर्ड, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा। फिर यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है जिसमें सबसे पहला है, पता लगाएं कि आपके क्षेत्र में एक विशेष मौसम से कौन से गाने, नृत्य, पर्व एवं भोजन संबंधित हैं। क्या भारत के दूसरे क्षेत्रों में इनमें कुछ समानता है, तो ये आपको करना है। सेकंड इसमें है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष ग्रामीण मकानों तथा लोगों की वेशभूषा की फोटोग्राफ इकट्ठे कीजिए, देखिए कि क्या उनमें और उन क्षेत्रों की जलवायु की दशाओं तथा उच्चवाद में कोई संबंध है या नहीं। तो ये आपको पूरा आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है ताकि चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है। प्लीज कीप रिवाइजिंग।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।